हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगर एक बार कुलगुरु प्रसन्न हो जाते और अक्षत को ठीक कर देते तो काली परी का जवानी छीनने वाला वरदान हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी कुलगुरु के प्रसन्न होने का बेसब्री से इंतजार था। बस मसला ये था कि क्या कुलगुरु वाकई पृथ्वीलोक जा पाएंगे और सोनल परी के मन की मुराद पूरी कर पाएंगे। रानी परी के मन में इस वक्त काफी दुविधा चल रही थी। तभी अचानक रानी परी के कानों में एक भयानक आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही रानी माँ ने चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी, वो डर गईं और उस राक्षस के कमरे की ओर दौड़ने लगी। वो राक्षस मूर्छित अवस्था में था। रानी परी देखना चाहती थी कि कहीं उस राक्षस ने फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। जैसे ही रानी परी वहां पहुंची, वो हैरान हो गईं। उस राक्षस ने तीन परियों को निशाना बना रखा था और अपने जादुई मंत्रों से उन्हें हवा में उड़ा रखा था। रानी परी ने देखते ही उस राक्षस से कहा, छोड़ दो उन्हें, हम तुम्हें हुक्म देते हैं, छोड़ दो परियों को। अगर हमारी परियों को कुछ भी हुआ तो हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही रानी परी ने धमकी देना शुरू किया, वो राक्षस जोरों से हंसने लगा और कहने लगा, नहीं, किसी भी कीमत पर मैं इन्हें यहां से नहीं जाने दूंगा। अभी इसी वक्त पृथ्वीलोक पर जो नृत्य कार्यक्रम चल रहा है उसे रोकना होगा। अगर तुमने वो नृत्य कार्यक्रम नहीं रोका तो मैं इन तीनों परियों की यहीं जान ले लूंगा। अब रानी परी पूरी तरह परेशान हो गई थी। वो समझ चुकी थी कि इस राक्षस की शक्तियों का मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं थी। अगर उन्होंने राक्षस की बात नहीं मानी तो वो उनकी तीनों परियों की जान ले लेगा। रानी परी कश्मकश का शिकार हो गई और वापस अपने कक्ष में आ गई। वहां जाकर उसने कुलगुरु की प्रतिमा के सामने बैठकर रोना शुरू कर दिया। इस वक्त उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, वो दुविधा में थी। वो सोचने लगी कि अगर अब उसकी मदद कोई कर सकता है तो सिर्फ उसके कुलगुरु ही हैं। अगर वो नृत्य कार्यक्रम रोकती है तो सोनल परी और बाकी परियों की घंटों की मेहनत बेकार हो जाएगी और अक्षत को ठीक करने का रास्ता भी निकल जाएगा। रानी माँ ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने कुलगुरु की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े और बड़े बड़े आंसू उसकी आंखों से निकलने लगे। तभी अचानक कुलगुरु की मूर्ति से आवाज आना शुरू हो गई, रानी माँ, हम समझ रहे हैं कि तुम काफी परेशान हो, लेकिन नृत्य कार्यक्रम में अभी इतना दम नहीं है कि वो हमें प्रसन्न कर सके। लेकिन तुम्हारे आंसुओं में इतना दम था कि हम खुद को रोक नहीं पाए और तुम्हारे आंसुओं से खींचे चले आए। अब जब हम यहाँ हैं तो हम तुम्हारी मदद करेंगे और उन परियों को बचाएंगे जिन्हें उस राक्षस ने अपने कब्जे में लिया हुआ है, रानी माँ कहने लगी। लेकिन कुलगुरु जी, इस वक्त सोनल परी और बाकी परियों को आपकी बहुत जरूरत है, आप उन्हें निराश नहीं कर सकते। अगर आपने उन्हें निराश किया तो उनका भरोसा सब चीजों पर से उठ जाएगा। इस वक्त सोनल परी की मोहब्बत का सवाल है, वो अक्षत से मोहब्बत करती है और उसकी जान बचाना सिर्फ आपके हाथों में है। जैसे ही रानी परी ने ये कहा, कुलगुरु जी ने उनकी ओर देखकर कहा, हम आपकी बात समझ रहे हैं रानी परी, लेकिन हम पृथ्वीलोक नहीं जा सकते। रानी परी मायूस हो गई और कहने लगी, तो जो परी इस वक्त नृत्य कार्यक्रम कर रही हैं उनका नृत्य कार्यक्रम करना बेकार है? क्या वो सब व्यर्थ ही जाएगा? क्या आप उनकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे? जैसे ही रानी परी ने ये कहा, कुलगुरु जी ने कहा, ये हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन विधाता की मर्जी से ही सारे काम होते हैं। अगर वाकई सोनल परी दिल से तपस्या कर रही है तो उसे उसका फल जरूर मिलेगा, बस उसे हिम्मत और हौसला रखना होगा। अगर उसने अपना हौसला डगमगाया तो उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी। कुलगुरु जी के शब्दों का मतलब रानी माँ नहीं समझ पाई, लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि कम से कम उनकी तीन परियों की जान बच रही थी। अचानक कुलगुरु जी की प्रतिमा से एक अजीब रोशनी निकली और वो रोशनी सीधा उस राक्षस के कक्ष में चली गई। जैसे ही वो रोशनी कक्ष में गई, तीनों परियां जिन्हें राक्षस हवा में उड़ा रहा था नीचे आ गईं और राक्षस के कक्ष का दरवाजा बंद हो गया। राक्षस जोरों से चीखा और कहने लगा, कुलगुरु, तुमने अपनी जिंदगी की गलती की है, बहुत जल्द मैं तुम्हारे इस परीलोक को नष्ट कर दूंगा। वो गुस्से से दहाड़ा। अब रानी परी को सिर्फ इस बात की चिंता होने लगी थी कि अगर सोनल परी का नृत्य कार्यक्रम सफल हो गया तो सोनल परी का दिल टूट जाएगा और अक्षत की जान चली जाएगी। वहीं काली परी इसी उम्मीद में थी कि कब अक्षत के साथ तीसरी और आखिरी बार रिश्ता बनाए और तारा परी को अपने कब्जे में ले ले। लेकिन जैसे ही वो अक्षत के घर गई और उसे वहां नहीं पाया तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अपनी जादुई शक्तियों से उसने पता लगा लिया कि अक्षत अमन सिंह राठौर के बगीचे में है। लेकिन काली परी उस बगीचे में नहीं जा सकती थी, क्योंकि उस बगीचे में जिन महाराज समाधि लिए हुए थे और वो जगह पवित्र हो चुकी थी। कोई भी काली शक्ति वहां नहीं आ सकती थी, सिवाय इसके कि वो इंसानी रूप में हो। लेकिन सीधे सीधे परी के रूप में वो वहां नहीं आ सकती थी। काली परी हैरान थी, लेकिन उसके पास बगीचे में जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। दूसरी ओर तारा परी अपने कमरे में आई थी। उसके दिल में बेचैनी थी, वो अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रही थी और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जब तक वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएगी, वो अमन को अपने परी होने का सच नहीं बता पाएगी। तभी उसे एक आइडिया आया और उसने करिश्मा से बात करने का फैसला किया। वो करिश्मा जी के कमरे में गई और देखा कि अमरेंद्र जी और करिश्मा जी एक दूसरे के साथ बिजी थे और मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे। तारापरी ने उस वक्त उनके कमरे में जाना ठीक नहीं समझा, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर उसने करिश्मा से बात नहीं की तो देर हो सकती है, इसीलिए उसने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही करिश्मा जी को पता चला कि बाहर तारापरी है, उन्होंने अमरेंद्र जी को दरवाजा खोलने के लिए कहा और खुद अपने कपड़े ठीक करने लगी। जैसे ही तारापरी अंदर गई, करिश्मा जी ने कहा, क्या बात है तारा बेटा, आप ठीक तो है ना? तारा ने आंखों ही आंखों में करिश्मा जी को समझाने की कोशिश की कि उसे उनकी जरूरत है, लेकिन अमरेंद्र जी की मौजूदगी में वो कुछ कह नहीं पा रही थी। अमरेंद्र जी करिश्मा जी के साथ थोड़े रोमांटिक हुए थे, इसलिए वो जल्द से जल्द तारा के जाने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन करिश्मा जी ने तारा की बेचैनी को भांप लिया और कहा, अच्छा आप एक काम कीजिए, प्लीज मेरे लिए बाहर से कुछ पानी ले आइए, मैं कुछ ठंडा पानी पीना चाहती हूँ। अमरेंद्र जी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो समझ गए थे कि करिश्मा जी उन्हें बहाने से भेज रही हैं, इसीलिए वो बाहर आ गए। जैसे ही अमरेंद्र जी बाहर आए, तारापरी ने कहा, मॉम मुझे आपकी मदद की जरूरत है। करिश्मा जी ने कहा, लेकिन बेटा आपके पास तो इतनी शक्तियां हैं, तो फिर आपको मेरी मदद की क्या जरूरत है? तारापरी ने काली परी की सारी बातें करिश्मा मॉम को बता दी, कैसे काली परी ने उसके जिस्म में अपनी काली शक्तियों का अंश डाल दिया है, जिसकी वजह से वो अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रही है। उसने कहा, अब आपको मेरी मदद करनी होगी काली परी का अंत करने के लिए, मुझे तिलिस्मी कड़ा और तिलिस्मी पत्थर की जरूरत है। अमन सर ने दोनों शक्तियों को एक कर लिया है, आप प्लीज मुझे वो शक्तियों दिला दीजिए। काली परी का अंत सिर्फ तिलिस्मी कड़ा और तिलिस्मी पत्थर ही कर सकते हैं। करिश्मा जी हैरान थी और कहने लगी, लेकिन बेटी तुम जानती हो कि तिलिस्मी पत्थर और तिलिस्मी कड़ा जिन महाराज की अमानत है और वो उसे किसी को नहीं दे सकते। तुम जानती हो एक बार काली शक्तियों ने, कई जिन्नातों ने मेरा ही रूप लेकर अमन से तिलिस्मी पत्थर मांगा था, लेकिन तुमने हमें बचा लिया था। अगर हमने अमन से तिलिस्मी कड़ा और पत्थर मांगा तो अमन कई सवाल करेगा।
तारा ने कहा, मैंने अमन सर को बताने की कोशिश की थी कि मैं एक परी हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात मजाक में ले ली है, क्योंकि मेरे पास शक्तियाँ नहीं हैं और बिना शक्तियों के मैं उन्हें यकीन नहीं दिला पा रही हूँ। तभी करिश्मा जी कहने लगी, लेकिन बेटे अगर तुम कहो तो मैं अमन को बता देती हूँ कि तुम एक परी हो। तारा परी कहने लगी, नहीं, मुझे लगता है कि अभी विधाता नहीं चाहते कि मैं अमन को इस बारे में बताऊँ, इसलिए आपको ही मेरी मदद करनी होगी। आपको जल्द से जल्द मुझे तिलिस्मी कड़ा और तिलिस्मी पत्थर दिलाना होगा। करिश्मा जी बोली, ठीक है बेटा, मैं जरूर इस बारे में सोचूंगी और अमन से बात करूंगी। तारापरी ने राहत की सांस ली और कहने लगी, मुझे पूरी उम्मीद है मॉम आप अमन सर से बात करेंगी और उन्हें यकीन दिलाएंगी कि उनकी बीवी एक मामूली इंसान नहीं है बल्कि एक परी है। लेकिन मुझे उस दिन का इंतजार है जब मुझे मेरी शक्तियाँ वापस मिलेंगी, उसके बाद मैं उन्हें अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के बाद बताऊंगी कि मैं एक परी हूँ। तब करिश्मा जी ने तारापरी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, बेके इस बीच में मैं आपको एक बात बताना भूल गई, बहुत जल्द पूर्णिमा की रात होने वाली है और उसी रात तुम्हारे वंश का यानी जिन्नातों के वंश का जन्म होगा। जैसे ही तारापरी ने ये सुना वो हैरान हो गई और कहने लगी, लेकिन मॉम अभी तो मुझे पूरे 2-3 महीने बाकी थे, इतनी जल्दी? तब करिश्मा जी कहने लगी, वो जिन्नातों का वंशज है और वो अगले 7 दिनों के अंदर आ जाएगा, वो भी पूर्णिमा की रात।